फिर दूसरे तरह के मामलात आते हैं जो बाजार की दुनिया से या तजारती दुनिया से ताल्लुक रखते हैं। बुनियादी तौर पर इस्लाम ने ये जिम्मेदारी चूंकि मर्दों पर डाली है, मर्दों को इसका जिम्मेदार ठहराया, इसलिए इस मामले में बुनियादी तौर पर गवाह मर्द ही होते हैं, उन्हीं के दरमियान लेन देन होता है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि औरत बवक्त जरूरत वहां गवाह नहीं बन सकती। फरमाया कि अगर कोई ऐसा मामला हो रहा है खानदान के दरमियान या किसी बाहर की किसी पार्टी के साथ कोई बिजनेस लोन लिया दिया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में उसकी डॉक्यूमेंटेशन जब हो तो दो मर्दों को गवाह बनाओ। वहां भी आप देखिए एक मर्द नहीं है, दो है, क्योंकि खुदा से एक फौत हो जाता है या कुछ भी मामला होता है तो उसमें सेफ साइड दो आदमी हो, और अगर दो आदमी ना हो तो एक मर्द हो तो फिर दूसरी तरफ दो औरतें ले ली जाए। अब यहाँ आके जो है वो नाराजगी या एक दिल की तंगी की कैफियत पैदा हुई कि हमारी कदर कम कर दी गई और हमें दो को क्यों मुकर्रर किया गया। लेकिन याद रखिए कि बुनियादी तौर पर यहाँ पर भी गवाही एक ही की है, दूसरी उस वक्त बोलेगी क्योंकि कुरान के अल्फाज में भी है अंत दिल्ला एहदा हुमा फतुज़क्किर एहदा हुमा लुखरा, अगर उनमें से एक भूलेगी तो दूसरी याद कराएगी, और अगर एक नहीं भूलती तो दूसरी को बोलने की जरूरत ही नहीं। तो गवाही तो एक ही दे रही है, दूसरी सिर्फ सपोर्ट कर रही है। अब ये जो सपोर्ट दी जा रही है औरत को, ये दरअसल इस्लाम की एक रियायत है, एक शफकत है, एक हमदर्दी है कि औरत पर बोझ ज्यादा ना पड़े।
और किसी बोझ को उठाने में अगर दो लोग मिल जाएं तो आसानी हो जाती है या मुश्किल? आसानी हो जाती है, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी चाहता है और हम उस पर नाराज होते हैं।
ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर आपको एक मेज उठाना है और एक तरफ आपका बेटा है और दूसरी तरफ बेटी है, तो अमूमन आप क्या करेंगे कि किसी दूसरी बच्ची को या किसी और को कहेंगे बहन की मदद करो कि उससे इतना बोझ उठवा रहे हो, और दूसरी तरफ एक लड़का भी अपनी जिस्मानी कुव्वत की वजह से काफी, अब ये कहना कि एक बहन के साथ दूसरी भी लग जाए, ये नौजुबिला उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही बल्कि उसके ऊपर एक रहमत और शफकत का मामला है, उसकी एक मखसूस पोजिशन को सामने रखते हुए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो औरत के वजूद पर बोझ होती हैं, कुछ उसके जहन पर भी बोझ होती है। यानी जिस तरह औरत जिस्मानी तौर पर आप देखें कि कभी वो पीरियड्स की कैफियत से गुजर रही है, कभी वो हमल की कैफियत में, कभी विलादत और फिर उसके बाद दूध पिलाने की, और बाद मीनोपॉज और बुढ़ापे में ऑस्टियोपोरोसिस से गुजरते हुए जिस्मानी तौर पर औरत इतने चेंजेस से गुजरती है कि इस्लाम ने उस पर इस तरह के बोझ नहीं डाले। और जब ये इन कैफियत से गुजरती है तो सिर्फ ये जिस्मानी कैफियत में तब्दीली नहीं आती बल्कि उसके साथ साथ उसकी जहनी कैफियत में भी तब्दीली आती है, जिसके इस वक्त साइंटिफिक प्रूफ मौजूद हैं जो कुरान ने नहीं दिए बल्कि उस दुनिया ने दिए हैं जो कुरान को नहीं मानते, उनका मैं लेटर ऑन फिक्र करूँगी। लेकिन यहाँ सिर्फ इतनी बात जानना ज़रूरी है कि एक मामले को अगर आप पॉजिटिवली देखेंगे तो उसी में खैर का पहलू भी नज़र आ सकता है आपको, और एक को अगर नाराज़गी अगर दुबाने की नज़र से देखेंगे तो उसी शख्स के अंदर आपको एक ऐब भी नज़र आ सकता है। मसलन कहा जाता है कि एक बादशाह जो था उसने एक ख्वाब देखा जिसके सारे दांत गिर गए, उसने एक नजूमी को बुलाया और कहा कि तुम मेरे ख्वाब की ताबीर करो, तो उसने ख्वाब की ताबीर ये की कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार मर जाएंगे। वो बहुत नाराज हुआ, उसने एक और शख्स को बुलाया और उसको कहा कि तुम मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ, तो उसने कहा बादशाह आप इतनी लंबी जिंदगी पाएंगे, अपने सारे रिश्तेदारों से बात तक जिएंगे। अब आप देखें कि सिर्फ एक जुमले में ये कि एक ने कहा कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार मर जाएंगे और दूसरे ने कहा तुम लंबी जिंदगी पाओगे, तो बात तो एक ही है लेकिन बात का जो अंदाज है या सोच का जो फर्क है, इसमें बात का जो मजा है या जो अंदाज है वो बिल्कुल बदल के रख दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस गवाही की आयत को भी इस नुक्ता नजर से देखें कि ये अल्लाह ताला ने एक औरत को सहूलत दी है, तो हमें इस पर शुक्रगुजारी के जज्बात आएंगे, और अगर हम इसको दूसरी नज़र से देखेंगे कि इसमें हमारी कद्र कीमत कम कर दी गई, तो जाहिर है कि फिर नाराजगी के जज्बात होंगे, और अल्लाह और उसके रसूल से नाराज होकर हमारा बनेगा तो कुछ नहीं, दीन ईमान का नुकसान ही होगा। फिर इसमें आप देखें कि ये जो बात है आधी गवाही जिसको बोला जाता है ये आधी नहीं है, ये भी एक गलत काम है, गवाही पूरी ही है, सिर्फ भूलने की शक्ल में दूसरी खातून बोलेगी। इसमें भी एक वाक्य मिलता है, इमाम शाफी की वालिदा जो थी वो किसी मौके पर हाजिर हुई, जज ने जब गवाही लेना चाहिए तो दो औरतों की गवाही को कहा कि दोनों बोलो, तो उन्होंने कहा कि कुरान ने दो को इकट्ठा बोलने के लिए नहीं कहा, गवाही एक ही देगी, अगर एक भूलेगी तो दूसरी साथ देगी, अगर वो नहीं भूलेगी तो एक की गवाही काफी है। यहाँ एक और भी कानूनी नुक्ता यहाँ सामने आता है कि अगर दो मर्द गवाही दे रहे हों और उनमें से एक भूल जाए और दूसरा याद कराए तो उनकी सारी गवाही साकित हो जाती, यानी अगर दो मर्दों की गवाही में दरमियान में इख्तलाफ पड़ जाए तो वो गवाही सारी रद्द हो जाती है। मसलन एक शख्स गवाही देता है कि मैंने देखा तो फलां शख्स कत्ल कर रहा था, अब उसी मुकदमे का दूसरा गवाह कहता नहीं नहीं वो कत्ल नहीं कर रहा था, वो तो कुछ और कर रहा था, तो क्या होगा, मुकदमे की सूरत बदल जाएगी। ये रियायत अल्लाह ने औरत को दी है कि अगर दो औरतें आपस में वहां इख्तलाफ भी कर जाती हैं तो मुकम्मल तौर पर गवाही रद्द नहीं की जाती, उसमें दूसरी औरत की तस्हीह को या दूसरी औरत की याद दहानी को रिजेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि उसमें और क्राइम को देखकर उसे कबूल किया जाता। तो ये याद रखिए कि गवाही जो है वो कोई राइट नहीं है हमारा कि जिससे हम महरूम किए जा रहे हैं और हमें उस पर नाराजगी हो, गवाही तो एक बोझ है, ये तो प्रिविलेज नहीं है जिससे हमें महरूमी हो रही, ये तो इनाम नहीं था कि जिसको हमसे छीन लिया गया, या हमें कुछ उसमें हासिल नहीं हो रहा कि जिससे हमें कोई कमी हो रही, ये तो एक बोझ पड़ रहा है। और आप जरा सा इमेजिन करें कि आज भी दुनिया में जितने ममालिक हैं उन सब की अदालतों का आप सर्वे कर लें कि हर रोज दिन में कितने मर्द आते हैं अदालतों में गवाही देने और कितनी औरतें आती हैं, आप पाकिस्तान में देख लें या इंग्लिस्तान में देख लें या अमेरिका में देख लें, कहीं की भी दुनिया भर की, क्यों, इसलिए कि ये एक बहुत जिम्मेदारी का और एक बहुत बोझ का काम है जिसमें बड़े बड़े मर्द पड़ने से घबराते हैं, कहाँ ये कि एक औरत जो है वो इस पर नाराजगी का इजहार करे कि मुझे ये मौका क्यों नहीं दिया गया कि मैं किसी की गवाही दूँ। आप देखें कि छोटे छोटे जो घर में मामला होते हैं उसमें भी अगर आपको कहीं गवाही देनी पड़े तो आमतौर पर आप कतराते हैं कि भाई मैं नहीं बोलती, किसी और को पूछो, मुझे पता है लेकिन मैं चुप रहूंगी, या आप किसी को कहते हैं कि जाओ फलां को ये बात बता दो, हालांकि चश्मदीद गवाह आप खुद होते हैं। तो घरेलू और खानदानी गवाहियों में भी हम अमूमन बचने की कोशिश करते हैं, कहां ये कि इंसान अदालती गवाहियों में अपने आप को पेश करे और उसको ये समझे कि अगर मुझे मौका नहीं मिला तो शायद मेरे साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म कर दिया गया है। अलावा अजीम गवाही देने में दो औरतों को एक साथ रखने की एक मसलहत ये भी हो सकती है कि उनको घबराहट और परेशानी न हो जो अकेले तन्हा होने की सूरत में औरत को लाहक हो सकती है, खुसूसन जबकि वो एक काजी और जज के सामने गवाही के लिए पेश हो और उसे काजी और वकील की तरफ से उठाए गए सवालात और जिरह का सामना भी हो। जाहिर है कि जब उसके साथ कोई दूसरी मददगार औरत मौजूद होगी तो उसके लिए फायदा होगा, उसे धारस बंधेगी, उसे हौसला मिलेगा। एक और वजह यह भी हो सकती है कि कमरे अदालत में अगर जज तन्हा हो तो उसके पास किसी औरत का तन्हा जाना, खास शहादत देने के लिए क्यों ना हो, ये दुरुस्त बात नहीं, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ को कंडम करता है कि एक मर्द और औरत कहीं पर तन्हा हो, क्योंकि इसमें कई खराबियों का अंदेशा होता है। तो आमतौर पर आप देखिए कि हमारे माशरे में अक्सरियत खवातीन की ऐसी है कि जो बाजार भी अकेले जाना नहीं चाहती, और कोई नहीं तो एक बच्चा भी साथ मिल जाए तो ले जाने को बेहतर समझती है बनिस्बत इसके कि वो अकेले जाए। और वो खातून जो बाजार जाते हुए घबराहट का शिकार होती है, ये किसी अहम काम के वक्त उसे अगर ये कहा जाए कि वो तन्हा गवाही के लिए निकले तो क्या ये उसके लिए एक मुश्किल काम ना होगा, एक परेशानी की बात ना होगी। इस्लाम ने हकीकत में औरत पर जुल्म नहीं किया, सिर्फ उसको एक सपोर्ट दी है। और ये सपोर्ट किस वजह से है, औरत की जो मुख्तलिफ कैफियात उस पर गुजरती हैं उसकी वजह से उसके अंदर जो फिजिकल और मेंटल चेंजेस आती हैं उसमें भूलने का अंसर मर्द की नस्बत औरत में ज्यादा। कुछ साल पहले टाइम्स मैगजीन में एक रिसर्च की गई जिसका रिजल्ट ये था कि औरत अपने रीजन को इमोशन से अलग नहीं कर सकती, यानी हर मामले में उसके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। जबकि मर्द जब वो फैसला को करने लगते हैं या कोई बात करने लगते हैं तो अमूमन जज्बात से आरी होकर बात करते हैं। उनके अंदर सलाहियत ऐसी है कि रीजन और इमोशन को अलग कर लेते हैं, जबकि औरत ऐसा करने को मुश्किल पाती है। असल आप देखें कि अगर आपको कहीं गवाही के लिए बुलाया जाए और आपको ये पता चले कि ये शख्स जो है ये गरीब है और मेरी गवाही से इसको बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये इसको जुर्माना पड़ जाएगा, तो आप उस पर तरस खा के चाहे सच्ची गवाही क्यों ना हो देने को नहीं पसंद करेंगी। इसी तरह अगर आपको ये पता चल जाए कि मेरी वजह से इस शख्स की गर्दन उड़ा दी जाएगी तो आप एक जहनी अजियत से गुजरेंगे। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि जहाँ हम सच बोल आते हैं बाद में आके पछताते रहते हैं कि ना ही बोलते ये सच, क्योंकि इस सच ने ऐसा और ऐसा कर दिया। दिन भर दिल में बार बार वो जज्बात को आके हिट करती है बात कि मेरी वजह से वो फलां का नुकसान हो गया या मेरी वजह से फलां को तकलीफ पहुंची। क्योंकि इस मामले में अल्लाह ताला ने चूंकि औरत से बच्चों की पैदाइश और उनकी तरबियत का काम लेना था और बच्चे के जिनको पालने और बढ़ाने के लिए जज्बात और मोहब्बत और इमोशंस की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए अल्लाह ने एक ज़रूरत के तहत वो बहतात रख दी हमारे अंदर और इसकी वजह से हमें कुछ और जिम्मेदारियों से फारिग कर दिया गया। मसलन हम पे जुमे की नमाज फर्ज नहीं की गई, हमें बाजमात मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का कोई हुक्म नहीं कि तुम जरूर जाओ। हाँ ये कि इक्का दुक्का जैसे हरम में आप जाते ही कहीं अपने ईमान के लिए जब आपका कभी दिल चाहे आपकी चॉइस पर है तो उसके लिए इजाजत है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि 5 वक्त अगर नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी शामत है। इसके बरक्स मर्दों के लिए इतना सख्त हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मेरी जगह नमाज की और पढ़ाए तकबीर हो जाए और मैं जाके उन लोगों के घरों को आग लगा दूँ, लोग मस्जिद में नहीं आते और घरों में नमाज पढ़ते हैं। यानी इतना सख्त मर्दों के लिए हुक्म, लेकिन औरत के लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं। जैसे जैसे सहूलत पाती है अफजल वक्त में नमाज पढ़ ले तो उसके लिए बेहतर है। फिर इसी तरह यह है कि ईदों के मौके पर भी उसकी अपनी चॉइस है, अगर जो उसको इंकरेज किया गया लेकिन उसको लाजम नहीं किया गया। इसी तरह यह है कि जहाद के लिए यानी कताल के लिए जंगों में औरत को जाने को मजबूर नहीं किया गया। हाँ सहाबियात में से अज़वाजे मुतहरात में से हम देखते हैं कि हर जंग के मौके पर कोई ना कोई एक छोटा सा ग्रुप खवातीन का अपनी चॉइस से जरूर जाता था लेकिन उसमें मजबूर नहीं किया गया। और इस वक्त भी आप देखते हैं कि आप के जो मर्द हजरात हैं जितने जितने मुश्किल जंगी काम वो करते हैं अगर उनकी जगह आपको करने पड़े आप सोच सकते हैं कि कितने मुश्किल मरहलों से वो सब गुजरते हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने औरत पर ये बोझ नहीं डाला तो ये आपकी रियायत और सहूलत के लिए और आपके ऊपर एक रहमत और शफकत के तौर पर इस बड़ी जिम्मेदारी से आपको महफूज रखा गया।
लेकिन ये याद रखिए कि जो काम औरत करती है वो आज तक किसी मर्द ने नहीं किया। मसलन बच्चे की पैदाइश और तरबियत का काम मर्द अंजाम नहीं दे सकता और अपनी जिम्मेदारी के निभाने की वजह से औरत जो है वो मर्द पर 3 दर्जे फौकियत रखती है जब वो माँ बनती है। एक हदीस में आता है कि एक शख्स आकर ये पूछता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मेरे हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है, तो आप फरमाते हैं तेरी माँ। फिर पूछता है तो आप यही जवाब देते हैं। तीसरी मरतबा फिर आप यही जवाब देते हैं। चौथी मरतबा कहते हैं कि तुम्हारा बाप। इस मामले में तो कभी किसी बाप ने आज तक ये नहीं कहा कि इस्लाम ने हमें माँ से कमतर क्यों रखा और माँ ही को सब कुछ क्यों दे दिया गया। और जैसे कि एक और हदीस में आता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो कभी किसी ने ये शिकायत नहीं की कि हमारे कदमों तले जन्नत क्यों नहीं है। तो बात यह है कि जहाँ मर्द की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं वहाँ उनका दर्जा ज़्यादा है और जहाँ औरत की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं वहाँ औरत का दर्जा ज़्यादा है।
अब इसमें आप देखें कि ये जो मैंने अभी जिक्र किया था कि औरत के ऊपर जो ऐसे मुख्तलिफ हालात गुजरते हैं कि जिनसे उसकी जो मेमोरी है वो मुतासर होती है, क्योंकि यहाँ भी बेसिकली भूलने की बात की गई है कि अगर भूल जाए यानी भूलने की वजह से उसको सपोर्ट दी गई है। ये नहीं कहा गया कि वो कमतर है मर्द के मुकाबले में इस वजह से या उसका कोई स्टेटस नहीं इस वजह से उसको सपोर्ट दी जा रही है। नहीं, भूलने की वजह से, भूलने का इस्तेमाल मर्दों की नस्बत क्यों ज़्यादा है औरत में, इसमें पहले तो मेंस्ट्रुएशन आता है। इस दौरान औरत 150 सिम्टम्स महसूस करती है साइकेट्री इन प्रैक्टिस अप्रैल 1983 के जर्नल के मुताबिक 40% औरतें किसी न किसी तरह प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या हैज के आने से कबल 8 या 10 दिन की कैफियत से गुजरती, यानी सारी औरतों में से 40% औरतें जो हैं वो किसी न किसी हल्की फुल्की तकलीफ से गुजरती हैं पीरियड शुरू होने के 8 से 10 दिन पहले। 80% औरतों को जिस्म में दर्द, पेट में तकलीफ वगैरह की शिकायत रहती है। एक जर्नल जिसका नाम
साइकोलॉजिकल
मेडिसिन है, उसके मुताबिक हैज से पहले कुछ दिनों में औरत चिड़चिड़ेपन, डिप्रेशन, अटेंशन, बेचैनी, किसी अकेलेपन का एहसास, बिला वजह रोना और मूड में तब्दीली जैसी कैफियत से गुजरती है। एक और रिपोर्ट जिसका नाम बीपीएमएस सिंड्रोम है, इसके मुताबिक इन दिनों औरतों के लिए हमदम मुतवज्जे होना मुश्किल होता है और याददाश्त भी किसी हद तक कमजोर होती है, यानी बाकी सारी सिम्टम्स में से एक सिम्टम उसकी याददाश्त का मुतासर होना भी है। इससे क्या पता चलता है कि कुरान ने अगर ये कहा कि अल्लाह ताला ने हमको बनाया है ना, और ये कुरान भी उसने उतारा है, उससे बढ़ के हमें कौन जानता था। तो चूंकि इन दिनों में औरत की याददाश्त मुतासर होती है, हो सकता है कि एक औरत ऐसी कैफियत में हो और उसको गवाही के लिए बुलाया जाए और वो अपनी उस तकलीफ की वजह से कुछ भूल जाए, तो एक दूसरी औरत को साथ रखा गया कि वो उसको फिर ऐसे मौके पर याद दहानी करा दे। फिर इसी तरह मिस कैरेजेस जो होते हैं खवातीन में, यानी हमल का जाया हो जाना, हमल में से 1/5 प्रेगनेंसी जाया हो जाती है, यानी ओवरऑल जैसा सर्वे किया गया, जिसके जहनी और जिस्मानी असरात होते हैं, यानी उसके बाद भी औरत एक इमोशनल सेटबैक का शिकार होती है या एक शॉक की कैफियत में जाती है, या वो अरसा जो है वो उसके लिए किसी भी तौर पर खुशगवार नहीं होता। फिर इसी तरह पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है, इसमें हमल के दौरान के अलावा वजह हमल के बाद भी 2/3 औरतें डिप्रेशन महसूस करती हैं। ये डिप्रेशन वजह हमल के बाद यानी बच्चे के पैदाइश के बाद पहले या तीसरे महीने में कभी भी डेवलप हो सकता है, 1 साल की मुद्दत तक बरकरार रह सकते, यानी बच्चे की पैदाइश के 1 साल बाद तक ये डिप्रेशन की कैफियत जो है वो पैदा हो सकती है। इसमें भी मुख्तलिफ तरह की कैफियत होती हैं, जैसे बेचैनी, थकन या नींद का ना आना। इसमें भी औरत को मुस्तकिल हौसला अफजाई की ज़रूरत रहती है, यानी उसको शौहर की तरफ से या दोस्तों की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से एक एनकरेजमेंट की जरूरत रहती है। वो छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों की मदद मांगती है, जज्बातियत का या मूड का भी शिकार होती है। ये जो कैफियत है, खासतौर पर ये वर्ड काबिल गौर है, छोटी छोटी बातों में दूसरों की मदद की जरूरत महसूस करती है। अब ये जो कुरान ने कहा कि दूसरी उसको याद करा दे, तो ये भी इसी में ये चीज आती है कि उसको एक नेचुरली एक सपोर्ट चाहिए होती है। फिर मेनोपॉज का जो अर्सा होता है, यानी संन्यास जिसको कहते हैं, आफ्टर 40 जो होता है, इसमें भी पेरीमेनोपॉज उस दौर को कहते हैं जो है इसके मुकम्मल तौर पर खत्म होने से पहले के 2 से 8 साल है। आमतौर पर कहते हैं कि यानी मिड 40s में ये शुरू हो जाता है। ख्वातीन देरी करती हैं, कुछ ख्वातीन को इससे पहले भी हो सकता है, और हर मुल्क की ये उम्र की जो मुद्दत है ये मुख्तलिफ है। अमूमन 48 से 52 के दौरान मेनोपॉज होता है, तो उसके 2 से 6 साल जो हैं वो बहुत ही अहम होते हैं। उसमें इसकी कैफियत जो है वो औरत महसूस करने लगती है और उसमें भी मेमोरी लॉस का शिकार होती है। फिर इसी तरह एक और फिट प्रेगनेंसी मैगजीन है, इसके 1998 के इशू में एक रिपोर्ट छपी जिसमें बताया गया कि तहकीकात के मुताबिक अब ये बात साबित हो चुकी है कि हमल के तीसरे हिस्से में, यानी आखिरी जो टर्म होती है 6 महीने से 9 महीने की मुद्दत तक, हामिला औरत का दिमाग छोटा हो जाता है। बरतानवी महक्कीकीन ने 10 हामिला औरतों के दिमाग का स्कैन किया एक बार हमल के तीसरे हिस्से में, और दोबारा यही स्कैन वजह हमल के बाद उन्हें पता चला कि उन औरतों का दिमाग हकीकतन श्रिंक हुआ, यानी 10 की 10 का जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था उनका दिमाग श्रिंक हुआ और फिर डिलीवरी के बाद अपने नॉर्मल साइज पे आ गया। वजह यह बताई गई कि हमल के दौरान ब्रेन सेल्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि वो सारी तवज्जो जिस्म की किस पर होती है, एक नई जिंदगी की प्रोडक्शन पर। रिसर्चर्स ने यह अंदाजा लगाया कि यह दिमाग का छोटा होना हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, मगर ये उम्मीद जाहिर की कि मजीद तहकीकात से ये मालूम हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन ये है उसके दिमाग पर असर पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के एक साइकोलॉजिस्ट की तहकीक के मुताबिक यही बात सामने आई कि हामला औरतों का बिहेवियर मुतासर होता है, और ये कि कई किस्म की इंफॉर्मेशन को रिटेन करने या याद रखने की सलाहियत नॉर्मल से बहुत कम हो जाती है। उन्होंने हामला औरतों को यह नसीहत की कि वो अपने साथ एक नोटबुक रखा करें जिसमें वो सारी बातें याद दहानी के तौर पर लिख लिया करें, और ये कि हर चीज की एक मखसूस जगह बना लिया करें, मसलन चाबियों वगैरह की, ताकि उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि ये भी एक नेचुरल सा, जिसमें औरत का अपना कोई अमल दखल नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसे काम में लगी हुई है या उसके ऊपर एक ऐसा बोझ है कि जो उसके साथ कोई और शेयर नहीं कर सकता। इसीलिए तो माँ का दर्जा जो है वो 3 गुना ज्यादा बाप के मुकाबले में बताया गया, कि बाप इस तकलीफ को या इस बोझ को नहीं उठाता जिसको माँ उठा रही है, और जिसकी वजह से वो सफर कर रही है, और जिसकी वजह से उसके अंदर ये कमी आ रही है। तो ये नऊज़ुबिल्लाह औरत मकाम या इस झूलने को या इस जिस्मानी प्रेशर के अंदर से जो गुजरती औरत, इससे नऊज़ुबिल्लाह औरत के मकाम में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि उसको इज्जत के 3 गुना या खिदमत के या हुस्न सलूक के 3 दर्जे ज्यादा अता किए गए, क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। लेकिन ऐसे में वो घर के बाहर के मामलात या तजारती मामलात, और वो भी बिजनेस रिलेटेड या रुपए पैसे से मुतल्लिक फिगर्स जो हैं, खुसूसन आप देखें कि हम डिस्क्रिप्शन में अमूमन अच्छे होते हैं, लेकिन जब फिगर्स की बात आती है तो बाज़ोका भूलने लगते हैं। और एक्यूरेट फिगर, और खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ लिखी हुई चीज़ ना हो और ज़बानी कोई गवाही देना हो, तो ऐसी सूरत में भूल चुक हो जाती है। फिर इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ने कुछ बहुत पढ़ी लिखी खवातीन जो PhD लेवल की भी थी, उनके इंटेलिजेंस और याददाश्त का टेस्ट किया, तो हमल के दौरान रिजल्ट एवरेज से कम आए, जबकि वजह हमल के बाद रिजल्ट्स नॉर्मल हो गए। तो चूंकि औरत इन कैफियत से गुजरती है, और जो औरत इस कैफियत से नहीं गुजरती वो अपने आप को वैसे अधूरा पाती, यानी हर औरत की ख्वाहिश होती है कि हाँ वो एक मरतबा या एक से ज्यादा मरतबा माँ बनने के अमल से गुजरे। इसमें वो बहुत प्राउड फील करती है कि उसके बच्चे हैं, और अगर अल्लाह ताला के किसी फैसले की वजह से वो इस नेमत से महरूम रहती है, तो वो अलग तौर पर एक और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो चूंकि औरत का एक दायरा इख्तियार मुख्तलिफ है, उसकी जिम्मेदारियां भी इस्लाम ने मुख्तलिफ रखी, अगर इस्लाम ने उस पर एक और बोझ डाला तो उसको कुछ और बोझों से निजात दी। इसलिए इन कैफियात को हम बावजूद कोशिश के बदल नहीं सकते, यानी या तो औरत से ये जिम्मेदारी वापस ले ली जाए कि वो माना बने, या ये कि वो पीरियड्स के उससे न गुजरे, या प्रेगनेंसी के मुख्तलिफ अदवार हैं इनसे न गुजरे। आप खुद सोचें कि अगर किसी भी औरत को आर्टिफिशियली इस चीज़ से महरूम कर दिया जाए तो उसके लिए किस कदर तकलीफ हो सकती है, और उसमें उसके लिए क्या हुसन और क्या बेहतरी हो सकती है। और दूसरी सूरत यह है कि औरत को दूसरे जो फराइज और जिम्मेदारियां हैं उनका बोझ हल्का कर दिया जाए, यानी दो में से एक काम हो सकता है। एक तो यह कि औरत को औरत ना रहने दिया जाए, जो औरत वाली उसकी सारी सिम्टम्स हैं वो ख़त्म की जाए, ताकि उसके अंदर से वो भूलने की या उसकी जो कमी बेशी के जो मामलात हैं वो दुरुस्त हो सके। और दूसरा यह है कि औरत को औरत रहने दिया जाए और उससे बाहर के बोझ कुछ कम कर दिए जाए। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए पसंद किया है हमें भी उसी पर राजी हो जाना चाहिए, और ऐसी चीज़ों को एतराज की नज़र से या बदगुमानी की नज़र से देखने की बजाय समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम दुनिया में भी एक खुशहाल और पुरअमन ज़िंदगी बसर कर सकें और हमारी आखिरत भी बेहतरीन हो। आज अगर हम अल्लाह के फैसलों पर राजी होंगे तो कल अल्लाह ताला ज़रूर पूछेंगे कि बंदे तू बता तेरी रजा क्या है। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.